ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम की कथा हर रोज की तरह आज भी आगे बढ़ेगी। आज का जो अध्याय है स्कंध चार श्रीमद् भागवतम अध्याय एक और श्लोक संख्या 16 है। अध्याय का नाम है मनु की पुत्रियों की वंशावली। विदुर उवाच अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्पत्यन्तहेतव। स्थिति उत्पत्ति अन्तहेतव। अनुवाद तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कहिए श्रील प्रभुपाद की। कृपया दोहराइए। यह सुनकर विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे गुरु, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जो संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा पालक तथा संहारक हैं, अत्रि मुनि की पत्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए? यह सुनकर विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे गुरु, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जो सृष्टि संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा पालक तथा संहारक हैं, अत्रि मुनि की पत्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए? तात्पर्य, विदुर की जिज्ञासा बिल्कुल उचित थी, क्योंकि उन्हें लगा कि जब परमात्मा ब्रह्मा तथा शिव अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुया के शरीर से प्रकट हुए हैं तो इसका कोई महान उद्देश्य होगा, अन्यथा वे इस प्रकार क्यों उत्पन्न होते। तो यहां पर श्रीमद् भागवतम में तो स्वयंभू मनु की वंशावली के अंतर्गत जो उनकी तीन पुत्रियों का वर्णन, उनकी जो जो तीन पुत्रियों के फिर जो वंश का विस्तार है उसके अंतर्गत की ये कथा चल रही है। बहुत विस्तार है वंशावली, मतलब तीन चार जनरेशन के बाद में तो कितना विस्तार हो जाता। तो ये तो पूरी मनु पूरी मानव जाति का ही विस्तार जिनसे हुआ है तो बहुत विशाल है। यहाँ पर विशेष रूप से कर्दम मुनि देवहूति और कर्दम मुनि उनकी जो नौ पुत्रियां हैं उन पुत्रियों के जो अन्य ऋषियों से जो विवाह हुए उसके अंतर्गत यहां पर बताया कि अत्रि मुनि की पत्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए। ये भागवतम का ये जो सृष्टि विस्तार, ब्रह्मा जी को जो भगवान की प्रेरणा है कि सृष्टि का विस्तार किस प्रकार हो, तो सभी भगवान की अनुमति या भगवान की प्रेरणा से ही सब कुछ सृष्टि का विस्तार का क्रम ब्रह्मा जी और मनु जो भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उनसे ही पूरी सृष्टि का अनेक ऋषियों के माध्यम से और विस्तार है, उसी के क्रम में यहाँ पर पूछा गया। देखिए श्रीमद् भागवतम में जो सृष्टि के क्रम में जिन जिन प्रजापतियों को ये जिम्मेदारी और जिन जिन प्रजापति जो बहुत ही तपनिष्ठ थे, तपस्वी। उन्हें कोई संसार की वासना या संसार का जो राग है स्त्री पुरुष के प्रति, उस प्रकार के राग से आकृष्ट होकर उन्होंने कोई अपनी तपस्या को नष्ट करके जैसे उसी में ओतप्रोत हो गए, इस प्रकार का नहीं। यहां पर जो सृष्टि के क्रम के अंतर्गत अनंत जीवों की जो उत्पत्ति बाद में बताएगी, विशेष से मनुष्य रूप में भी, तो इन ऋषि मुनियों ने जो सृष्टि का के विस्तार में जो अपना योगदान दिया, उनकी स्थिति कितनी कितनी महान है, इस चीज की जानकारी यहां पर हमें मिलती जाएगी। क्योंकि श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो सृष्टि का क्रम, सृष्टि का विस्तार, उसका भी जो मुख्य प्रयोजन है वह भगवान जीवों के कल्याणार्थ ही है। उस चीज को हम समझने के दृष्टिकोण से इस भागवत कथा का अनुशीलन सभी करने का प्रयास करेंगे। तो मैत्रेय उवाच, इसके बाद के जो तीन श्लोक हैं उनका तात्पर्य नहीं है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा से उनका भी पढ़ लूं। तो कल जो श्लोक आएगा बहुत उत्कृष्ट है, उसके अंतर्गत बहुत प्रभुपाद जी ने विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन तीन श्लोकों के अंतर्गत जो मुझे गुरुवर्ग की कृपा से जो कहने की प्रेरणा हुई है उसी को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैत्रेय उवाच, 17वां श्लोक है। ब्रह्मणा चोदितः सृष्टाव अत्रि ब्रह्म विदाम्बरः सह पत्न्या यया वृक्षम कुलाद्रिम तपसी स्थितः। अनुवाद, मैत्रेय ने कहा, अनुसूया से विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा के वंश चलाने के लिए आदेश दिया तो वे अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए वृक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए। श्लोक 18वां, तस्मिन् प्रसूनस् तबक पलाशा शोक कानने वार्भी सवद्भीर उद्भृष्टे निर्विंध्याया समन्तत है। अनुवाद, उस पर्वत घाटी में निर्विंध्या नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक अशोक के वृक्ष तथा पलाश पुष्पों से लदे अन्य पौधे हैं। वहां झरने से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। वे पति तथा पत्नी ऐसे सुरम्य स्थान में पहुंचे। श्लोक संख्या 19, प्राणायामेन संयम्य मनो वर्ष शतम मुनि अदिष्ट देख पादेन निद्वंद्वो नील भोजन है। अनुवाद, वहां पर मुनि ने योगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। श्रीमद् भागवतम की जय। देखिए, श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जिन महापुरुषों की, सभी भगवान के महान भक्तों की, या भगवत प्राप्ति के लिए जिन्होंने अपने जीवन का जो इंद्रिय सुख, इसको एक तरफ करके, दूर करके, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से जो इतने जबरदस्त तप को धारण किया, अब ये श्रीमद् भागवतम भले सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में या कलयुग में ही हर जगह है, इस श्रीमद् भागवतम में जो एकमात्र एकांतिक प्रयोजन प्रकट हुआ है वो यही कि हमें हमारा जो परम श्रेय है, परमार्थ, उसकी ओर हमें आगे बढ़ना है। युग के अनुसार, समय अवस्था के अनुसार विधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन लक्ष्य सर्वकाल में एक ही है, भगवत प्राप्ति। क्योंकि मनुष्य मात्र में ही इस धर्म अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, परम वस्तु जो श्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि मनुष्य मात्र का स्वभाव प्रगतिशील है ना, तो हम मनुष्य इस चीज का निर्धारण कर सकता है कि मुझे प्रगति तब तक करनी है जिसके फिर प्रगति नहीं, क्योंकि जब तक वह परम गति, परम प्रगति को प्राप्त कर लेगा तब तक उसे चैन नहीं पड़ेगा। तो मनुष्य मात्र के लिए ही किस प्रकार उस परमार्थ, परम लाभ की चीज को प्राप्त कर सके, इसके लिए यहां पर अत्रि मुनि ने जो तपस्या की है उनके युग और अवस्था के अनुसार वह बहुत ही गंभीर बात है। अपने पूर्वज, अपने पिता, महापरम पिता, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वो वंश विस्तार के कार्य में आनाकानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अपने आप को, ये इतना गहन कार्य है, उसके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए कितनी तपस्या की आवश्यकता। तपस्या में उनका राग भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या ही उनका स्वभाव बन जाए, जिससे कुछ समय के लिए सृष्टि कार्य के लिए उन्हें जो कार्य करना हो उसमें उनका राग वो च्युत नहीं हो जाए। अपनी जो तपस्या की जो साधना है, तपस्या से उन्हें भगवत प्राप्ति की जो जो उमंग, निष्ठा, रुचि उत्पन्न हुई, वो रुचि में अरुचि नहीं हो जाए, इसके लिए कितनी जबरदस्त तपस्या को वो अर्जित करना चाह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में हम मंगलाचरण के अंतर्गत बहुत बार बाजते हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। देखिए यहां भी प्रयोजन वही है, किस प्रकार हमारी भगवान के प्रति नैष्ठिकी, अच्युत अखंड भक्ति उत्पन्न हो। लेकिन इसमें देखिए साधन कितना अद्भुत बताया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उस परम निष्ठा को प्राप्त करने के लिए जो हमारे हमारे शुद्धिकरण की आवश्यकता है, वो जो साधन है, साधना है, श्रीमद् भागवतम की अनुशीलन से वह संपन्न होगी, वो शुद्धिकरण। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन, केवल बाँचते समय नहीं, बाँचने के बाद में उसके पर मनन, आते समय जाते समय जो कुछ भी हमने श्रवण किया, जो कुछ भी हमारे मन हृदय ने हृदयंगम किया, उस चीज का अनुशीलन मनन बहुत आवश्यक है। लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम कहती है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, कितनी गहन बात बताई है। जब प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद इस दिव्य भक्त समाज के सान्निध्य में आए तो इस श्लोक ने बहुत गजब का प्रभाव डाला, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन करने से व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि ओहो, हम तो धन्य हो गए, हम तो पवित्र हो गए, अब तो हमने जो कुछ जानना है सब कुछ जान लिया, अब तो हम दिव्य ज्ञान संपन्न हो गए। क्योंकि श्रीमद् भागवतम का एक सूत्र भी, एक पंक्ति भी, एक शब्द भी वास्तव में हमें दिव्य ज्ञान से अभिभूत कर देता है। लेकिन यहां पर श्रीमद् भागवतम हमें सावधान करती है, कहती कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी असत आवरण है, असत हमारा जो राग है, असत संस्कार है, प्राय लगभग संपूर्ण ही नष्ट हो जाता है, प्राय संपूर्ण ही, मतलब फिर भी संभावना रहती है कि वापस वो असत आवरण आ सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन करते हुए कभी मुझे ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि मैं पूर्ण पवित्र हो गया। श्रीमद् भागवतम के अनुशीलन की सतत आवश्यकता है, किसी भी अवस्था में ऐसी तृप्ति बड़ी भयंकर होगी कि अब तो बस मैं तृप्त हो गया, अब तो मुझे आगे कुछ जाने, मैंने श्रीमद् भागवतम का बस जान लिया। सतत नित्यम भागवत सेवया, तो उस दृष्टि के अंतर्गत कल कथा के बाद में हम प्रभु राधाकांत प्रभु जी के साथ कुछ विचार विमर्श कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत अद्भुत बात जगदानंद पंडित के जो प्रेम विवर्त के अंतर्गत एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जगदानंद पंडित अपनी वाणी से बोलने के पहले कुछ विचार करते हैं कि भगवान आपकी महिमा जो इतनी अनंत है और मैं उसका वर्णन करने जा रहा हूं, मेरी क्षमता से बिल्कुल नगण्य है, तो मुझे जैसे एक संशय होता है कि मैं अनंत महिमा वाले भगवान का के बारे में क्या कुछ कह सकूंगा, जो वास्तव में वाणी के अगोचर है, जिनकी महिमा, जिनकी सब कुछ अधोक्षज है, उनके बारे में हम वास्तव में क्या वर्णन कर सकते हैं। यदि हम हमारे अध्ययन तपस्या के माध्यम से भी यदि हम हमेशा विचार आवे कि अब मैं भगवान को, भगवान का वर्णन करने में या भगवान को समझने की मैंने योग्यता पा ली, तो ये मेरी भयंकर भूल होगी। इस चीज का बोध प्रभु ने बड़े कृपा करके करवाया, बड़ा रोमांच हुआ वास्तव में। तो ये हम सबके लिए है, भगवान की महिमा इतनी अनंत है और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए किस तरह की तैयारी की आवश्यकता है, श्रीमद् भागवतम के आख्यानों से हमें एक केवल संकेत मिलता है। हम उस प्रकार की तैयारी के लिए भी हम कितने अयोग्य हैं, हमारी जो अवस्थिति है वो तो बहुत ही चिंता करने वाली है। योग्यता विचारे किछु नहीं आर तोमार शक्ति। हम तो हमारे गुरुवर्ग आचार्यों के प्रति यही प्रणति करें, हे गुरुदेव, हे निताय गौर सुंदर, जहां तक आपको पाने के लिए, आपको, आपका सानिध्य पाने के लिए, आपकी, उसके लिए जहां यदि मैं योग्यता का विचार करूं तो मैं कुछ नहीं पाता, ये वास्तव में शुद्ध भक्तों की मनस्थिति है। वो हमें अपने अंतर्भाव से हमें बता रहे हैं किस प्रकार हमें तैयारी करनी है भगवत प्राप्ति के लिए। आपकी करुणा, आपकी कृपा ही एकमात्र सार है। मेरे जीवन में यदि कोई वैल्यू है तो वास्तव में वो आपकी कृपावश, आपकी करुणा के कारण ही है। मेरी योग्यता का जहां मैं विचार करता हूं तो मैं तो बिल्कुल फक्कड़ ही अपने आप को पाता हूं। इस मनस्थिति को मुझे इसका सिंचन करना है कि हम कहीं अध्ययन अनुशीलन साधना को से संपन्न होकर अपने आप को भगवान को समझने के लिए, भगवान को पाने के लिए, अब तो भगवान मेरे बाएं हाथ में ही है, अब तो मैंने भगवान का सब कुछ समझ लिया है, इसलिए अब तो बस मैं भगवान को पाने वाला ही हूं, अब मुझे ऐसी किंचित भी ऐसा किंचित भी विचार बहुत भयंकर दोष है। इसी के लिए तो शुद्ध भक्ति मार्ग में जो प्रणति है, जो प्रणति का जो पथ है, जो श्रेय, परम श्रेय का पथ है, उसके अंतर्गत शरणागति शरणागति के स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। और शरणागति का जो स्वरूप, जो षडांग बताए हैं, तो जो उसके अंतर्गत यदि हम विश्लेषण भी करें तो जो शरणागति का जो स्वरूप है वह क्या है? दैन्य। दैन्य ही शरणागति, क्योंकि जो शरणागति संपन्न व्यक्ति है, जो प्रेम के स्तर पर आरूढ़ होना चाहता है भगवान के लिए, वह तो बस भगवान को रिझाने के लिए अपने आप का संपूर्ण न्योछावर, किस भाव से कि भगवान मेरा तो वास्तव में कुछ है ही नहीं, जब मैं स्वयं ही आपका हूं, इस भाव में रहते हुए वो निष्किंचनता, निष्किंचन भाव, आत्मनिवेदन, जो नवदा भक्ति के अंदर आत्मनिवेदन का भाव है और निष्किंचन भाव, दोनों का स्वरूप तो एक जैसा ही है, लेकिन हमारे आचार्य उसमें थोड़ा विश्लेषण बता देगी। आत्मसमर्पण जैसा भगवान ने भगवत गीता में के सर्वधर्मान परित्यज्य, उसमें बहुत गुण दोष का विचार करके हम विचार करते भगवान के यदि शरणागत हो जाएंगे तो हमारे दूसरे कार्य रह जाएंगे, केवल भगवान की ही भक्ति करेंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो समाज भी कुछ कहेगा, परिवार कुछ कहेगा, इत्यादि इत्यादि, और अन्य जो उपचार उपासनाएं सब कुछ, तो उनसे कुछ दोष कुछ अमंगल होने की संभावना है। तो भगवान बोलते हैं उसका कोई विचार मत करो, तुमने बहुत से जो प्रयास करे, और संसार में प्रत्येक जीव मनुष्य मात्र ही अपनी पूर्व संस्कार पूर्व वासनाओं के अनुरूप बहुत से भोगों को प्राप्त करने के लिए, अपनी संचित इच्छाओं को पुष्ट करने के लिए पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है, परिश्रम करता है, भागदौड़ करता है। उस मनुष्य इस वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ही मनुष्य को जो प्राप्ति होती है इस सत्संग की, सत्संग का सौभाग्य, हमारी वैदिक संस्कृति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत सत्संग का सौभाग्य, वर्णाश्रम धर्म का पालन अपने आप में परमार्थ नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था उस परमार्थ को उत्पन्न कराने की एक संभावना उत्पन्न करता है। तो उस सत्संग के अंतर्गत हमें जब इस चीज का बोध होता है कि भगवान की प्रति शरणागति, जिसका जिसके लिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो दूसरे जो दोष या त्रुटि, ये दोष त्रुटि भगवान की दृष्टि से नहीं है, जीव के अपने ही संचित संस्कार के वश बोलता है कि मैं सबको छोड़कर इतनी देवी देवताओं का, इतने अनुष्ठानों का, इतने कार्यों को छोड़कर एकांतिक भाव से भगवान की शरण में आ जाऊं, और भगवान कह रहे हैं हां। तो जब मनुष्य जब तक अपने प्रयास में सफल होता रहता है तब तक सोचता है कि हां भगवान को तो बाद में भजनूंगा, अभी तो मेरे हाथ से मेरी कोशिश से सब कुछ अनुकूल चल ही रहा है। तो उसकी जो शरणागति में बहुत बार विलंब हो जाता है, लेकिन भगवान की किसी पे विशेष कृपा हो और उसका उसका प्रयास, उसके प्रयास भी वो सफल नहीं होता तो ठीक है, अरे इस प्रपंच के लिए मैं इतनी भागदौड़ कर रहा हूं, कुछ चलो सत्संग के माध्यम से सुना है भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें सब पापों से सभी अनर्थों से रक्षा करूंगा, कोई कोई तुम्हारा बाल बांका या कोई तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, कोई तुम्हारे जीवन में बाधा स्वरूप नहीं बनेगा, तुम मेरी शरणागत आ जाओ। तो ये शरणागति जो है उसमें, क्योंकि अपने कर्तृत्व से जो पाना चाहता था अपने संस्कार, बस वो प्राप्त नहीं हुआ, तो कहा अब इस झंझट को ही छोड़ो, मैं भगवान के शरण आता हूं। तो यहां पर हेतु क्या है? अपने कर्तृत्व में असफलता शरणागति का हेतु है, लेकिन ये न केन प्रकारेण, उस रूप में भी भगवान की शरणागति में आकर शुद्ध भक्तों के सानिध्य में भगवत भजन से उसे जो प्राप्ति होनी है वो तो वही है, भगवान के चरणों में अनुराग, उनकी प्राप्ति। लेकिन यहाँ पर जिस परिस्थिति में वो भगवान के शरणागत होता है, और अकिंचन भाव, अकिंचन भाव में तो वो वास्तव में भगवान के दिव्य अनंत अधोक्षज स्वरूप को, उनकी महिमा का श्रवण करके उनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए जो चीज अनावश्यक है, जो बाधक स्वरूप है, उन्हें समझकर वो इस त्रिगुणात्मक जगत के जो आवेश हैं, इनके जो पदार्थ है, इनका जो वैभव है, इन चीजों को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर वो पहले से ही इनसे दूर होकर जो शरणागति, वो अकिंचन भाव की शरणागति। तो अकिंचन भाव से भगवान के शरणागत होने का हेतु क्या है? भगवत प्रीति। वास्तव में उसका प्रारंभ से ही भगवत प्रीति ही उसका लक्ष्य है। इसलिए भगवत प्रीति में जो बाधक स्वरूप है, उन असत संग, असत पदार्थों से वो अपने आप को मुक्त करके आगे बढ़ता है। तो यहां पर जो बता रहे हैं कि हे गुरु, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जो संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा पालक तथा संहारक है, अत्रि मुनि की पत्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए। अब यहां पर सहज बोध होने से हम सनातन संस्कृति में देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव, इनको हम सृष्टि के सृष्टा पालक तथा संहारक हैं, इस रूप में वर्णन यहां पर किया गया है। लेकिन वास्तव में सृष्टि के जो रचयिता हैं भगवान, यहां पर जो गुणावतारों का जो वर्णन यहां आया है, लेकिन गुणावतारों के मूल कौन है? मूल तो विष्णु ही है, इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। विष्णु तत्व के जो, विष्णु तत्व में जो आदि परम स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण है, और वो आदि पुरुष श्री कृष्ण ही अपने दो रूप से जो विस्तार करते हैं, एक तो स्वांश या पूर्णांश, पूर्णांश का एक नाम है स्वांश और एक है विभिन्नांश। तो यहां पर जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जो तीन रूप में सृष्टि के सृष्टा पालक तथा संहारक रूप में जो यहां वर्णन किया है, इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। बहुत बार हमारी सहज होती कि भगवान तो एक ही है, वो जिस रूप में भी आवे सब सब एक ही है, क्योंकि अल्टीमेटली अल्टीमेटली वो निराकार है। इस प्रकार की भ्रांति, इस प्रकार की भ्रांति जनमानस में प्राय व्याप्त है। हम देखते हैं, भाई तुम्हारा जिसमें मन लगे उसको भज लो, क्योंकि भगवान तो सब एक ही है। भगवान में बहुवचनता, यही बहुत बड़ी भ्रांति। भगवान में वास्तव में बहुवचनता है ही नहीं, एक ही भगवान जो व्यापक है, जो विष्णु तत्व है, मूल विष्णु तत्व, उन्होंने ही अपना स्वांश रूप में जो पूर्ण अंश है उसको विस्तार किया, और जो बाकी है वो विभिन्नांश है। तो जितने भी विष्णु तत्व हैं वे भगवान के पूर्णांश हैं, पूर्णांश का ही दूसरा नाम स्वांश है। व्यक्ति दो नहीं हो सकते, भगवान दो नहीं हो सकते, लेकिन जो स्वांश है, जो विष्णु तत्व है, वे ही भगवान है। इस चीज को स्पष्ट रूप से समझना होगा। मूल स्वरूप से आदि स्वरूप में वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ही अपने स्वांश रूप से अनंत विष्णु स्वरूप, नरसिंह, राम, वराह, इनका विस्तार करते हैं। उनमें भी पूर्ण शक्ति है। एक बार हम भ्रमण में थे प्रचार के अंतर्गत, तो एक व्यक्ति, एक संप्रदाय है गुजरात में बहुत प्रचलित है, स्वामीनारायण, आपने नाम सुना होगा। तो उनके एक संत हमको मिले, और तो लोगों को एक उस समय बता रहे थे कि देखिए जी, भगवान तो सब एक है, वो त्रेता युग में राम जी आए, वो लीला पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। फिर द्वापर में कृष्ण भगवान आए, वो लीला पुरुषोत्तम थे। और अब हमारे ये स्वामी नारायण जो भी उनकी मान्यता या श्रद्धा है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो हमने उनके साधु को एक प्रश्न किया, तो हमने कहा तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो रामचंद्र जी थे वो पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं थे, उनका वास्तव में मुंह ऐसा का ऐसा खुला रह गया, क्या बोले उनको सूझी नहीं। तो वास्तव में इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं कि ये भगवान बड़े, क्योंकि सभी विष्णु व्यापक, सभी पूर्णांश हैं, आदि स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण है। एति चांश कलाप उनसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान का कृष्ण ये स्वयं भगवान है। नारायण नरसिंह वराह भी ये स्वयं भगवान नहीं है, बस इतना ये बोध, क्योंकि जो मूल स्वरूप है, जो मूल दीपक है वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही अपने पूर्णांशों के रूप में, स्वांश अर्थात पूर्णांश, जो ये कल के श्लोक में प्रभुपाद जी जो कितने परसेंट, 94% विष्णु तत्व में, 94% शिव तत्व में, 84% ब्रह्मा जी में, 70%, ये जो विश्लेषण है ये वास्तव में पूर्णांश होते भी भगवान उतनी शक्ति का ही प्रकाश करते हैं। इस दृष्टि से भगवान के तो अनंत गुण हैं, 64 गुणों का जो वर्णन भी शास्त्रों में विशेष मुख्य गुणों के रूप में दिया है, उनमें जो व्यापक हैं, जो भगवान हैं, जो विष्णु तत्व है, उनमें सभी गुणों का विद्यमान है, लेकिन आवश्यकता अनुसार उसका प्रकाश उतना ही हो पाता है। जिस प्रकार नरसिंह अवतार में, ये थोड़ी नरसिंह रूप में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम ही है, लेकिन आवश्यकता अनुसार उतनी ही शक्ति का प्रकाश किया, फिर उसका रूप का संवरण किया। तो हमें भगवत तत्व को समझने में इस प्रकार का द्वेत बुद्धि कभी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। जो विष्णु, विष्णवे प्रभ विष्णवे, जो व्यापक है वही भगवान है। वदन्ति तत्तत्वविदस् तत्त्वं यद्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म रूप से भगवान व्यापक है, जहां तक ब्रह्म जो सहज बोध होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अब समय आया है मनुष्य जीवन में ये जानने के लिए कि सबसे बड़े कौन है। ब्रह्म अर्थात जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे बड़े होंगे वही व्यापक होंगे ना। तो एक नाम उनका ब्रह्म है, दूसरा नाम परमात्मा। तो जो परमात्मा नाम है वो भी व्यापक है, लेकिन वो व्यापक होते हो के साथ भी उनका रूप भी है और उनका सर्व अंतर्यामित्व भी है। कितनी अद्भुत बात है, भगवान सर्व व्यापक ही नहीं है बल्कि उनका दिव्य रूप भी है और सर्व अंतर्यामित्व है, सबके हृदय में विराजमान है, इतनी उनकी महिमा हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ब्रह्मेति परमात्मा इति और भगवान इति शब्दते। यद ब्रह्म यद अद्वैत ब्रह्म उपनिषदि तदपि अस्य तनुभा ये आत्मा अंतर्यामी पुरुष इतिशो अश्याम से विभव है षडैश्वर्य पूर्ण यही है भगवान। तो जितने भी विष्णु स्वरूप है भगवान के, सभी षडैश्वर्य पूर्ण है। ये नहीं कि आप राम जी की उपासना करते आप राम वाले हो गए, हम कृष्ण वाले हो गए, वो विष्णु के उपास हो गए, तो तीन भगवानों को इकट्ठा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, व्यक्ति एक ही है, एक ही पुरुष अपनी नित्य विलास और आवश्यकता अनुसार अपने आप को अनंत रूपों में, अनंत आकारों में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, यही चीज मान। तो जो राम जी का जो स्वरूप है वह भी कृष्ण का ही स्वरूप है, विष्णु का जो स्वरूप वह कृष्ण का ही स्वरूप है, क्योंकि स्वयं रूप जो मूल स्वरूप है भगवान का वह कृष्ण स्वरूप है। बस इतना ही जानकारी के लिए आवश्यक है। मूल स्वरूप की प्रतिष्ठा श्रीमद् भागवतम में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्रीमद् भागवतम का प्रतिज्ञा, इस चीज को प्रतिष्ठित करनी चाहती, जिस चीज को श्रीमद् भागवतम प्रतिष्ठित करना चाहती है वही प्रतिज्ञा वाक्य, जिसे राजा का आदेश। अब राजा का आदेश बार बार थोड़ी होता है, एक बार ही होता, पूरे सभी पुराणों में सर्वत्र एक ही बार राजा का आदेश हो गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं रूप, स्वयं भगवान
कृष्ण रूप ही है, बाकी सब उनके स्वांश पूर्ण शक्ति संपन्न, और उनकी जो चार विशेष गुण हैं उनका वर्णन, लेकिन सभी पूर्णांश हैं, सभी जो स्वांश स्वरूप है पूर्ण शक्ति संपन्न है। ऐसा कभी नहीं हम सोचेंगे कि यहां पर विष्णु तत्व में 84 गुणों का जो है प्रकाश है, उन 84% के अंतर्गत भी अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग शक्ति या कहीं रूप की का प्रकाश होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूर्ण शक्ति संपन्न नहीं है, वे सभी विष्णु तत्व विष्णु स्वरूप पूर्ण शक्ति संपन्न है, एक तो ये विश्लेषण। अब यहां पर उसके अंतर्गत हमें विचार करना है जो ये भ्रांति जनमानस में है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों भगवान के ही रूप है ना। अब देखिए जो स्वांश है जो विष्णु तत्व है वही भगवान है, और जो विभिन्नांश है भले वो शिव जी हो चाहे ब्रह्मा हो या कोई और भी बड़े से बड़े देवता हो, वे सभी सेवक हैं। भगवान तो सभी जो विष्णु तत्व हैं वही भगवान हैं। तो उन जो सत्व तनु जो सत्व गुण के अधिष्ठाता है, यहां पर वर्णन बहुत जगह श्रीमद् भागवत में आया है कि जो सत्व गुण के अधिष्ठाता है वही विष्णु, वही हमारा उनसे ही हमारा उनके आश्रय में आने से ही हमारा कल्याण होगा। क्योंकि जो अन्य भूतपति हैं, अन्य जो देवता हैं, जो वास्तव में स्वरूप से स्वरूप तो भगवान नहीं है, स्वरूप तो व्यापक नहीं है, स्वरूप तो वे भगवान के सेवक हैं। तो भगवान के सेवक को भगवान के साथ एक लेवल पर एक तराजू पे रखना, एक मानना, ये महद अपराध है, यही पाखंड या एक तरह से कह सके नास्तिकता है। नास्तिकता वास्तव में क्या है कि भगवान का जो दिव्य शाश्वत स्वरूप है उसको तो हम उस रूप से स्वीकार करते नहीं, फिर जिस स्वरूप में भी हमारा आकर्षण हो गया वो भी भगवान है। ये बहुत भयंकर ग्रंथि है जनमानस में। कल्याण जीव का फिर बताया कि जो ब्रह्मा जी सृष्टि के लिए हैं वो रजोगुण की उपाधि युक्त हैं ब्रह्मा जी, शिव जी है वो तमोगुण की उपाधि युक्त हैं, और भगवान सत्वगुण की उपाधि युक्त नहीं है। भगवान तो तीनों गुणों के आश्रय हैं, लेकिन फिर भी शिव जी जो बहुत बहुत भगवान के बहुत ही शक्तिशाली सेवक हैं भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए, तमोगुण, अब हमको तो हमें तो तमोगुण का जरा सा प्रभाव आने से हमारी तो विस्मृति हो जाती है, जो सत्य है जो सत्य से हमारी विस्मृति हो जाती है। शिव जी की महिमा कितनी गजब की है कि वो सत्वगुण मतलब तमोगुण की उपाधि को अंगीकार करके भी अपनी भगवान निष्ठा से विचलित नहीं होते। भगवान ने सृष्टि के विनाश के लिए कितने शक्तिशाली उनके सेवक हैं शिव जी। ब्रह्मा जी इस सृष्टि को मूर्त रूप देने का कार्य रजोगुण के आवेश से, रजोगुण को अंगीकार करके, रजोगुण से रजोगुण की उपाधि को अंगीकार करके सृष्टि का कार्य किया, लेकिन उस तरह भगवान सत्वगुण के अधिष्ठाता होकर, भगवान सत्वगुण के अधिष्ठाता, सत्वगुण की उपाधि नहीं ग्रहण की है, क्योंकि अधोक्षज है भगवान का एक नाम क्या है, अधोक्षज है, जो त्रिगुणात्मक प्रभाव से मुक्त है। शिवजी तमोगुण के प्रभाव से आक्रांत है, तमोगुण की उपाधि से उक्त तभी तो वो संहार का कार्य, और रजोगुण की उपाधि से युक्त ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में है। देखिए बहुत बार बहुत कोई इमारत या कोई बन जाता है लेकिन जो उसका संचालन करता है सब बागडोर उसी के हाथ में है ना, तो उसी प्रकार हर अवस्था में सृष्टि का जो कंट्रोल है वो वास्तव में भगवान के ही हाथ में, विष्णु भगवान के ही हाथ में है, इस चीज को हमें स्पष्ट समझना होगा। और जीव का कल्याण भगवान के आश्रय में आने से ही होगा, न कि तमोगुण और रजोगुण के में अधिष्ठित देवताओं शिवजी या ब्रह्मा इंद्र चंद्र गणेश इत्यादि जितने भी जो देवता हैं सभी इन तीन गुणों में अधिष्ठित तीन गुणों की उपाधि इनमें है। प्राय जो देवता है वो उनको सत्वगुण क्यों कहते हैं, हमने ब्रह्मा जी और शिव जी की तो बात कही, बाकी जो गणेश और जितने भी पंचोपासना के अंतर्गत जो देवता हैं उनको सत्वगुण क्यों मानते हैं, क्योंकि उन्होंने क्योंकि वो भगवान के आश्रित अपनी अवस्था को समझते हैं कि भगवान ही हमारे मालिक हैं, भगवान ही हमारे ईश्वर हैं और उनकी आज्ञा के अनुरूप इस सृष्टि के संचालन का कार्य करते हैं। तो इस बात को हम समझने का हमेशा प्रयास करेंगे कि कल्याण हमारा भगवान के आश्रित होने से ही होगा। हम श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन, भागवत के माध्यम से भगवान का जो स्वरूप है वो अधोक्षज है, अधोक्ष मतलब भगवान के स्वरूप में रजोगुण तमोगुण सत्वगुण की उपाधि नहीं है, फिर भी भगवान अपनी कृपा से सत्वगुण को अंगीकार करने का तात्पर्य है उसके अधिष्ठाता होकर, उसके आश्रित होकर नहीं। शिवजी तमोगुण के आश्रित होकर उपाधि युक्त, ब्रह्मा जी रजोगुण के उपाधि और आश्रित होकर, लेकिन भगवान सत्वगुण के आश्रित नहीं, सत्वगुण के अधिष्ठाता होकर इस सृष्टि का कार्य समझते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्तुति के अंतर्गत एक बहुत अच्छी इस बात को समझाने के लिए कहा है, मैं स्वयं समझने का प्रयास बार बार करता हूं क्योंकि हमें भगवान के स्वरूप को समझने में, हालांकि वो अधोक्षज है लेकिन उनकी कृपा से ही हम उनको हृदयंगम कर पाएंगे, लेकिन एक में करने से कि सब भगवान एक है इस ग्रंथि के रहते हुए हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसका कारण है क्योंकि हमें जो परमार्थ परम भगवान जहां पर यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम भगवान के परम धाम, जहां पर फिर इस त्रिगुणात्मक जगत का प्रभाव नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें एकांतिक भाव से जो अधोक्षज है, जो सर्वव्यापक, जो षडैश्वर्य पूर्ण, जो अति सुंदर, जो चिन्मय गुणों से संपन्न है, उन भगवान के प्रति हमारे हृदय में अनुराग पाना है। ये नहीं कि भगवान सब एक ही है क्योंकि अल्टीमेटली वो निराकार है। ये जो निराकार की ग्रंथि है भगवान जी हमारे जनमानस में, हम क्योंकि हम सब भारत की इस भूमि में हम सब बढ़े हैं तो बहुत जगह सत्संग के नाम पर बहुत सी चीजें सुनते हैं कि हाँ भाई सब भगवान ही है और अल्टीमेटली क्योंकि वो निराकार है इसके लिए किसी से अपना काम चला लो। अरे भाई काम चला लो मतलब हम संसार की जो वासनाएं हैं उन्हें ही तो पुष्ट करना चाह रहे हैं। जो परम कल्याणकारी जीव की परम कल्याण के लिए भगवान ने अपने आप को जो अनंत रूपों में, अनंत विष्णु स्वरूपों में अनंत अपनी शक्ति का, ऐश्वर्य का, रूप का, ज्ञान का जो प्रकाश किया है उनके प्रति हमें आकृष्ट होना है। उन भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं होकर हम भगवान एक आत्मा है जो सर्वव्यापक निराकार है, उस प्रकार की यदि मन अवस्था हमारी है तो ये बहुत ही विडंबना है। वास्तव में भगवान तो इस भगवान के बारे में जो हमारी कल्पना होती है ना कि भगवान अल्टीमेटली बस वो एक निराकार तत्व है, इस प्रकार की कल्पना से हमें मुक्त करने के लिए भगवान ने दिव्य दिव्य अवतार, ऋषि शिव ऋषि योनि में अद्भुत अद्भुत लीला अवतारों को प्रकाशित किया जिससे उनकी महिमा को सुनकर मनुष्य को ये बोध हो जाए कि अरे रे मनुष्य में इतनी शक्ति का प्रकाश नहीं हो सकता। तो जब हमारी शक्ति ही क्या जो इतनी अचिंत्य और असीम शक्ति को प्रकाशित कर सकते हैं, उनके बारे में निराकार की धारणा करना ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। तभी इस चीज में सावधान होना है श्रीमद् भागवत की कथा के अंतर्गत श्री वृंदावन धाम में जो भी नए भक्त भी आए हैं, इस चीज को ग्रहण करके जाना है कि भगवान तो इतनी अनंत शक्ति, भगवान का रूप, भगवान का नाम रूप गुण लीला संपन्न है, दिव्य नाम रूप गुण लीला संपन्न है, इसीलिए तो हम भगवान के नाम का करते हैं। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप गुण उनसे अभिन्न है। इस चीज को समझते हुए ही जब हम साधना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो हमारे मन में जो आसक्ति है उनके प्रति होनी चाहिए जिनका हम नाम ले रहे हैं। ये नहीं कि हम भजन करते जाओ और अल्टीमेटली उस जो अव्यक्त निराकार है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाए, इस भ्रांति में हमें कभी नहीं रहना। तो ब्रह्मा जी एक स्तुति के अंतर्गत बताते हैं कि अजानत महिमा, कि हे भगवान जो आपकी महिमा को नहीं जानते वो क्या सोचते हैं कि आप ही आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप मतलब निराकार, यहां पे यही बात बताई है। अजानताम त्वत महिमा, हे भगवान जो आपकी महिमा नहीं जानते वो सोचते हैं कि आप तो आत्मस्वरूप है, वो आत्मस्वरूप होकर इस नश्वर जगत में आप अपने आप को अवस्थित करके जिस प्रकार सृष्टि के लिए मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ हूं उसी प्रकार इसके पालन के लिए आप विष्णु बन के आए हैं और संहार के लिए शिव रूप में आप अपने आप को प्रकट करते हैं। आप तो आत्मस्वरूप है मतलब आप तो निराकार हैं, लेकिन इस सृष्टि में आकर सत्व गुण को धारण करके आप विष्णु बनते हैं, रजोगुण को धारण करके रजोगुण की उपाधि से आप ब्रह्मा बनते हैं और तमोगुण की उपाधि ग्रहण करके शिवजी बनते हैं। तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी है, जिस प्रकार शिव जी है, उसी प्रकार जो विष्णु या जितने भी कृष्ण नारायण जितने भी हैं, शिरोदक्षाई विष्णु इतने, ये भी सब सत्व गुण की उपाधि युक्त है। ये भयंकर भूल लोगों के जनमानस में है कि हाँ तीन भगवान हैं हिंदुओं में, ब्रह्मा विष्णु और महेश, अब तीनों में किसी को बस, तीनों एक ही है। ये बड़ी भयंकर भूल है। जो विष्णु है वही अधोक्षज है, शिवजी और ब्रह्मा जी और अन्य देवता वो सब विभिन्नांश है, सभी भगवान के सेवक है। सेवक को भगवान के स्तर पे रखना ये बहुत बड़ी भयंकर भूल हो जाएगी। तो इस सिद्धांत को समझकर ही हमारे जो पूर्व सत्संग के अंतर्गत, जिसे हम लोग सत्संग कहते आए हैं, उसके अंतर्गत ऐसी भ्रांति आ गई है तो उसको मिटाने की अति आवश्यकता है, अन्यथा हम परमार्थ से च्युत हो जाएंगे। इसी बात को स्पष्ट करना है। फिर किस उद्देश्य से ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही ये सती अनुसूया के यहां उत्पन्न हुए, उसका विश्लेषण कल के श्लोक में बहुत अद्भुत ढंग से आएगा। आप सभी के धैर्य के लिए खूब खूब धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा में क्या कितना बोल सका, गुरु वर्गों ने जितना प्रेरित किया उतना ही कहा, जितना समझा उसे ही प्रकट करने की इच्छा की मात्र की है। किसी का प्रश्न या कोई जिज्ञासा है तो प्रकट कीजिए। सभी संतुष्ट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।